शुरू करें हम। प्रणव अरिहंता, प्रणमो सिद्धाणम, प्रणमो आयरियाणम, प्रणमो वचायाणम, प्रणमो लोये भवसावनम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारिकम, प्रधानम सर्व धर्मानां, जैनम जयतु शासनम। स्यात्वाद नय शट द्रव्य गुण पर आये, जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान, जग कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार, उसके लिए वाणी वापो वंदना शत वारे, वंदना शत वारे। त्यागवाद नए शट द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण आदि सभी विषयों का यथार्थ स्वरूप कहकर जगत के जीवों का उपकार करने वाली जनवाणी माँ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कहकर स्वरूप यथार्थ जग का, माने जगत का यथार्थ स्वरूप बतलाने वाली है जनवाणी माँ, न केवल आत्मा का। कहकर स्वरूप यथार्थ जग का, माने सब का, अकेले जीव का नहीं। अकेले शुद्ध आत्मा की चर्चा करे वो द्रव्यानुयोग, असंयोगी आत्मा को बतलाए वो द्रव्यानुयोग, और उसी असंयोगी आत्मा को संयोग से बतलाए वो कर्मानुयोग। असंयोगी आत्मा को असंयोगी रूप कहते रहे तो समझ में नहीं आए, इसलिए व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में संयोग के माध्यम से करणानुयोग की शैली में आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। समझाना आत्मा का स्वरूप है, जनवाणी का प्रयोजन तो आत्मा समझाना है, भगवान आत्मा को समझाना है। अब उस आत्मा को कैसे समझाएं, उस आत्मा का स्वरूप क्या है, उस आत्मा को कैसे समझें, तो हम तो व्यवहारी जन है, हमें यदि व्यवहार की भाषा में नहीं समझाओगे तो व्यवहारातीत भगवान आत्मा समझ में कैसे आएगा। अरे गुणस्थानातीत भगवान आत्मा को समझने के लिए गुणस्थान समझना पड़ेगा, व्यवहारातीत आत्मा को समझने के लिए व्यवहार से समझना पड़ेगा। आपको गुणस्थानातीत कहें और गुणस्थानों की आपको खबर ना हो तो गुणस्थानातीत गए भगवान आत्मा कैसे पकड़ने आए। ग्रंथादी रात समय सार 50 से 55 तक की गाथाएं, 29 बोल, और हर गाथा में 2-4-5 शब्द ऐसे दिए कुंद स्वामी ने, गुणस्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे तो जैसा नहीं है वो स्वरूप समझना तो पड़ेगा, कहीं गलत पहनी में ऐसा न हो जाए कि गुणस्थानों को न समझे और गुणस्थान वाले आत्मा को ही गुणस्थानाती समझ बैठे, ऐसी गलत फहमी तो हो सकती है ना। तो क्या नहीं हूँ मैं, कैसा नहीं हूँ मैं, अरे प्रमत्त नहीं हूँ, अरे प्रमत्त क्या होता है, अरे ये मत समझो, क्योंकि ये तो कर्मानुयोग का विषय है। आप तो द्रव्यानुयोग की बात समझो कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। अरे लेकिन प्रमत्त अप्रमत्त होता क्या ये तो समझाओ, ये तो कर्णानुयोग की बात है, तो हम मानते नहीं है। अब कर्णानुयोग आप नहीं मानोगे गुणस्थान यदि आप नहीं समझोगे तो गुणस्थान अतीत भगवान आत्मा कैसे समझ में आएगा। गुरुदेव के प्रवचन में कितनी बातें चलती है बार बार में, कभी पांच भावों से चर्चा करते हैं, कभी स्वक्षेत्र पर क्षेत्र से चर्चा करते हैं, स्वकाल पर काल से चर्चा करते हैं, कभी औदयिक आदि भावों से भिन्न पारिणामिक भाव स्वरूप समझाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, पांच भावों की चर्चा, ये कौन से अनुयोग की चर्चा है? मुंह देख के तिलक करते हैं जितन भाई। अभी अभी ये पांच भावों की चर्चा नियम सार के आधार से कहो तो कहेंगे द्रव्यानुयोग की चर्चा, आप पढ़ाओगे तो कहेंगे द्रव्यानुयोग की, और मैं चर्चा करता हूँ तो बोलते हैं कर्मानुयोग की। एक निर्णय नहीं है पांच भाव की चर्चा द्रव्यानुयोग है या कर्मानुयोग है। देखो भाई, पांच भावों की चर्चा करते समय जिस समय अपने चैतन्य के भावों की चर्चा करें वो द्रव्यानुयोग की चर्चा, शुद्ध पारिणामिक भाव की चर्चा तो द्रव्यानुयोग है ही, क्या औदयिक भाव की चर्चा भी, औपशमिक चायिक चायोपशमिक भाव की चर्चा भी, ये भी द्रव्यानुयोग की चर्चा है, लेकिन परिणाम सापेक्ष चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं बातों को समझने के लिए जब कर्म सापेक्ष देखा जाता है तो कर्णानुयोग की सीमा में चला जाता है। वस्तु एक, देखने के एंगल अलग अलग, आत्म वस्तु एक, उसे देखने का नजरिया अलग अलग। जिनवाणी माता आत्मा को दिखाना चाहती है, अब सामने वाले की योग्यता कैसी है, जैसी योग्यता देखती है वैसी शैली में बात करते। समझाना तो आत्मा को ही है। हम कहें कि आपके मकान का चित्र देखना है भाई, चित्र भेजो आपके मकान का, तो आपने सोचा यार इतना बड़ा मकान है, पंडित जी को एक दिशा से लेकर के भेज दूंगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा, तो आपने चारों दिशाओं से फोटो खींचा उसका, हमारे पास में भेजा, हमारे पास में चार चित्र और चारों चित्र अलग अलग, एक चित्र दूसरे चित्र से बिल्कुल नहीं मिलता। अब हमने पूछा सुभाष भाई ये चारों मकान आपके हैं, तो क्या कहेंगे बोलो, ये चार नहीं है एक ही मकान है। नहीं तो दिखते तो चारों अलग अलग है, उन्हें चारों फोटो लेने का एंगल अलग अलग था, मकान एक ही है। ये जिनवाणी माँ है ना, ये प्रथमानुयोग चरणानुयोग कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग, ये चारों अनुयोगों से भगवान आत्मा को बतलाती है, आत्मा का स्वरूप बतलाती है, और सबकी दृष्टि से देखने पर आत्मा का स्वरूप भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है, दिखाई भिन्न भिन्न रूप में देता है, आत्मा एक है, ज्ञायक एक रूप है। देखो औपशमिक भाव कहता है तो कर्मों की अपेक्षा से चर्चा करो, अरे चार भावों को यदि आप कर्मों की अपेक्षा से नहीं समझेंगे तो उन चार भाव से भिन्न पारिणामिक भाव कैसे समझ में आएगा। पारिणामिक भाव को समझाओ, पारिणामिक भाव किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़ो पारिणामिक भाव की, तो यही परिभाषा मिलेगी, जो भाव कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम से निरपेक्ष है, इनसे भिन्न है, इनसे पार है, इनसे अतीत है, वो पारिणामिक भाव है। फिर हमने समझाना शुरू किया कि इनसे निरपेक्ष कैसा होता है, कर्म का उदय उपशम आदि क्या होते हैं, तो आपने कहा कर्णानुयोग मत समझाओ, आप तो पारिणामिक समझाओ। मैं कैसे समझाऊंगा, टोडरमल जी ने ऐसी चर्चा उठाई सातवें अध्याय में उभयवासी प्रकरण में, तो उस प्रकरण को समझाते समय कुछ ऐसी कल्पना करता हूं कि मानो कोई व्यक्ति आपसे मुंबई में मिला नितिन भाई, और उसने ये कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, और आप बहुत प्रसन्न दिखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आपकी प्रसन्नता का राज क्या है, आप इतने मस्त क्यों रहते हैं नवीन भाई, हमेशा मस्त दिखते हैं आप। अपना ज्ञाय भगवान आत्मा वो त्रिकाल एक रूप है, तो आने जाने भावों वाले भावों की तरफ लक्ष्य न देकर अपने ज्ञाय स्वभाव को देखो, मस्त रहो। मैंने एक बात ऐसी समझाई कि भैया आत्मा को समझे बिना सुखी नहीं हो सकता, ये समझाएंगे मूल बात तो यही है। अब उस व्यक्ति ने कहा भैया देखो मैं तो दुखी बहुत हूँ और आत्मा को समझे बिना सुखी नहीं हो सकते, तो आत्मा कैसे समझ में आएगा वो बताओ, आत्मा कैसे समझ में आएगा? तो जवाब दिया भाई, आत्मा समझना है आपको तो एक काम करो, आत्मा समझने के लिए यहाँ मुंबई में तो कोई अच्छा ठिकाना दिखता नहीं है, आप एक काम करो देवलाली चले जाओ, बात नहीं है। और देवलाली में वहां आत्मा की चर्चा चलती है, राजकोट से पंडित जी आए हुए हैं और शुद्ध आत्मा की चर्चा समझाते हैं, ठीक है ना? तो आप उस आत्मा की चर्चा को गहराई से समझोगे तो आपके समझ में आएगी। और यदि आपको और ज्यादा गहराई से आत्मा को समझना हो तो जयपुर चले जाओ, टोडरमल स्मारक, वहां आत्मा की चर्चा जानने को मिलेगी। सुखी होने का तो एक ही उपाय है, आत्मा को जानना। तो आप सुखी होने के लिए एक काम करो, जयपुर चले जाओ, बहुत अच्छा स्थान है। देवलाली भी आ सकते हो, लेकिन देवलाली वो डिपेंड करता है उस समय शिविर चल रहा है या नहीं चल रहा, और जयपुर में तो 12 महीना ऐसा ही चलता है। जयपुर पहुंच गया, यहाँ आ गया, यहाँ आकर के उसने पहले तो कभी पढ़ा नहीं था आत्मा के बारे में, सुना नहीं था आत्मा के बारे में, जानता नहीं है आत्मा क्या होता है, आत्मा का क्या स्वरूप है। तो यहाँ आकर के और उसने किसी व्यक्ति से पूछा, हमारे कोई महाविद्यालय के शास्त्रीय विद्यार्थी है, किसी से पूछा कि भैया मुझे आत्मा समझना है तो कुछ बतलाओ कितने समझने। बोले मैं समझा देता हूँ, आपको कैसे समझना है आत्मा बताओ। बोले कैसे समझना है मतलब? बोले देखो भाई, आत्मा दो तरह से समझा सकता हूँ मैं, निश्चय से भी और व्यवहार से भी, आपको कैसा समझना है? अब वो बेचारा पहली पहली बार तो आया, वो तो निश्चय भी नहीं समझता, व्यवहार भी नहीं समझता, निश्चय का स्वरूप भी नहीं जानता, व्यवहार का स्वरूप भी नहीं जानता। अरे मैं तो समझता नहीं हूँ भैया, आप ही बता दो, निश्चय से आत्मा, व्यवहार से आत्मा कोई अलग अलग है क्या? कोई निश्चय से अलग तरह से समझाया जाता है, निश्चय से आत्मा का स्वरूप अलग प्रकार का है, व्यवहार से आत्मा का स्वरूप अलग प्रकार का है। मेरे समझ में नहीं आता भैया, मैं तो दोनों समझ लूंगा, लेकिन दोनों में तो तुम बताओ तो सही, निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है? देखो भाई, जो सच्ची बात है, जो खरी बात है, जो वास्तविक बात है, वो तो है निश्चय। और जो संयोगों से लगावटी मिलावटी इधर उधर की बात करे वो है व्यवहार। बोलो कौन सा आत्मा समझाऊं, निश्चय वाला कि व्यवहार वाला? क्या कहेगा वो आदमी? अच्छे आदमी हो आप, मुझे आत्मा समझना है तो मेरे को सच्ची बात ही बताओ ना, ये लगावटी मिलावटी झूठी बात क्यों बताते हो इधर उधर की बात? आत्मा समझना है तो सच्ची बात बतलाओ, खरी बात बतलाओ। मुझे झूठी लगावटी मिलावटी इधर उधर की बातों में, व्यवहार वाली जो बातें कह रहे हो उन बातों में उलझाना मत। तो ठीक है, मैं निश्चय से समझा देता हूँ। उभयवासी प्रकरण टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, टोडरमल जी ने समझाना शुरू किया और उसी शैली में हमारे विद्वान ने समझाया। निश्चय से आत्मा समझा रहा हूं, कैसा होता है आत्मा? निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। समझ में आया? समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे? आत्मा समझना है मेरे को कि नहीं समझ में आया? मैं वापस समझाता हूं, निश्चय से ही समझाऊंगा। निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। ये टोडरमल जी के शब्द है, बिल्कुल ऐसे निश्चय से कहकर के टोडरमल जी कहते हैं कि समझ में आएगा उसको कुछ नहीं समझ में आया भैया, ये चिंता मत करो, वापस समझाता हूँ। निश्चय से तो आत्मा, बोलो कितनी बार कहें तो समझ में आए? तो पंडित जी साहब ये कहते हैं कि यदि ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति आज यहाँ आत्मा समझने के लिए आया है, जिस व्यक्ति ने अभी जीव के भेद प्रभेद नहीं पढ़े हैं, जिस व्यक्ति ने अभी शरीर वाले आत्मा की चर्चा नहीं समझी है, जिसको अभी 5 शरीरों की खबर नहीं है, जिसको अभी गुणस्थान आदि की खबर नहीं है, जिसको मार्गणा स्थान की खबर नहीं है, जिसको इंद्रियों आदि का परिचय नहीं है, जिसको त्रस स्थावर आदि का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को यदि निश्चय से शुद्ध आत्मा त्रिकाली ध्रुव की बात कहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में नर नारकादि जीव, गुणस्थान वाले जीव, समझ में आती है बात? ये त्रस जीव है, ये स्थावर जीव है, ये शरीर वाले जीव है, ये कहाँ रहते हैं, यदि इस बात का जवाब देते हुए निश्चय से ही देते रहो कि असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, तो कौन समझ पाएगा उन लोग सही जवाब है कि नहीं। सुभाष भाई बम्बई आना है आपके यहाँ, आप कहाँ रहते हो? ये पंडित जी निश्चय से बताऊं कि व्यवहार से? बताओ किरण भाई, निश्चय से बताऊंगे असंख्यात प्रदेशों में। देखिए ठीक है, ये तो एड्रेस को लेकर के पहुंचू, बम्बई से पहुंच पाऊंगा, चलेगा काम। कितनी जरूरत है व्यवहार नहीं थे इन विषयों को समझने की, माने इन भावों से भिन्न आत्मा को समझने के लिए इन भावों की स्थापना जरूरी है। व्यवहार के निषेध के पहले व्यवहार की स्थापना जरूरी है क्या? और ये सारे विषय कर्णानुयोग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए कर्णानुयोग की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप ये सोचे बिना कर्णानुयोग के अकेले द्रव्यानुयोग से अपनी नैया पार लग जाएगी? द्रव्यानुयोग को समझने के लिए कर्णानुयोग की जरूरत है, लेकिन समय कम हो तो डायरेक्ट शुद्ध आत्मा की बात समझना। क्या बादाम का हलवे जैसी है भैया, समय कम है क्या? और जल्दी ताकत चाहिए आपको, अब पचाने की ताकत अब जो है तो है, लेकिन खाओ आप तो, जो होगा तो होगा। तो अपनी शक्ति विचार, अपनी शक्ति का विचार करके, अपनी सामर्थ्य का विचार करके, उपयोग की निर्मलता के लिए, परिणामों की स्थिरता के लिए, उपयोग की एकाग्रता के लिए, ये कर्णानुयोग से अच्छा और कोई अवलंबन का माध्यम हो नहीं सकता। जिनवाणी तो चारों अनुयोगमय है, इसलिए अपने उपयोग रूपी बंदर को इस जिनवाणी रूपी वृक्ष की शाखाओं पर उछल कूद करने के लिए, खेलने के लिए छोड़ दो। कभी प्रथमानुयोग पढ़ो, कभी चरणानुयोग पढ़ो, द्रव्यानुयोग का विशेष अभ्यास करो, लेकिन कर्णानुयोग का भी थोड़ा बहुत अभ्यास तो करो ही करो। आप इसको छोड़ करके यदि पार पाना चाहो तो काम नहीं चलेगा। हम कहते हैं पांच शरीरों से भिन्न है, सब शरीरों से रहित में आत्मा। अब सब शरीर कौन कौन से, ये क्या होता था? स्वाधारी शरीर है, व्यक्रियक शरीर है, आरक शरीर है, तेजस शरीर है, कार्मण शरीर है। अब इन पांच शरीरों की चर्चा ही आपको पता नहीं हो, आपको सब शरीरों से रहित, आपको सिद्ध भगवान शरीर से रहित होते हैं तो मेरा भी शरीर छूट जाएगा तो सिद्ध भगवान बन जाऊंगा ना मैं? क्यों, शरीर छूटेगा तो सिद्ध नहीं बनूंगा? नहीं 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 बनोगे, क्यों? क्योंकि अनादि संबंधे च तेजस और कारमान शरीर का संबंध विग्रह गति में भी पाया जाता है। अब लो, अब क्या करें? अब ना विग्रह गति समझ में आ रही है, ना तेजस कारमान समझ में आ रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इस कर्णानुयोग के बिना हम उन विषयों को समझें कैसे, आखिर उसकी गहराई में कैसे जाएं? उस आत्मा को समझने के लिए, आत्मा माने मैं स्वयं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसे समझने के लिए टोडरमल जी साहब कहते हैं व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाओ। अब आप कहेंगे साहब टोडरमल जी तो चारों अनुयोग वाले थे, आप तो कुंद कुंद आचार्य की भाषा में बात करो। तो कुंद कुंद स्वामी की आठवीं गाथा देख लो, समय तार की जय रवि सप्तम अणज्य अणज्य वासम मिणा दुदा है। व्यवहार है अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, जरूरत है ना इस चीज की। गुरुदेव के प्रवचनों को समझने के लिए थोड़ा बहुत कर्णानुयोग का अभ्यास जरूरी है या नहीं है? निश्चयवादी जैसी दशा हो जाएगी, सच कहता हूँ मैं। थोड़ा बहुत कर्णानुयोग का अभ्यास न हुए और सिर्फ शुद्ध आत्मा की चर्चा को ही पढ़े सुने तो निश्चयवादी जैसी दशा हो जाए। और अकेला कर्णानुयोग ही पढ़े और गुरुदेव का व्याख्यान न सुने तो व्यवहारवासी होकर के संसार में परिभ्रमण करता रहे। बैलेंस तो होना चाहिए दोनों चीजों में, दोनों का अभ्यास हो, कर्णानुयोग का भी और द्रव्यानुयोग का भी अभ्यास दोनों का हो और बल द्रव्यानुयोग का हो। क्या कहा? अभ्यास दोनों का, पकड़ दोनों की, समझ दोनों की, विचार विवेक दोनों विषयों के संदर्भ में और दोनों विषयों के बारे में विचार विवेक करते हुए भी बल किसका होना चाहिए, दृष्टि किसकी होनी चाहिए, गुणस्थानों की चर्चा, गुणस्थानातीत भगवान आत्मा को समझने के लिए ये मैं नहीं हूँ, ये बात अंत में आनी चाहिए। कर्म की चर्चा करो, आठ कर्मों से समझाओ, ज्ञानावरणी आदि से समझाओ, कल करेंगे चर्चा इनकी विस्तार से। माने इनसे भगवान आत्मा को समझो, माने घूमटसार पढ़ो आप, लेकिन घूमटसार पढ़ करके भी रेस से निकालते हुए समयसार निकलना चाहिए। समयसार माने गए भगवान आत्मा, त्रिलोकसार पढ़ करके भी गए भगवान आत्मा निकलना चाहिए। मैं कहता हूँ चारों अनुयोगों का केंद्र बिंदु यदि कोई है तो भगवान आत्मा है। एक भगवान आत्मा को निकाल करके एक साइड में बिठाओ और हम कहते हैं अब वर्णन करो प्रथमानुयोग का, जीव की बात नहीं आनी चाहिए, कैसे होगा वर्णन? जीव की बात नहीं आनी चाहिए और चरणानुयोग का वर्णन करो, कैसे करोगे? जीव की बात नहीं आनी चाहिए और करणानुयोग जीव समुद्रों की चर्चा करो, असंख्यात जीव समुद्र हैं, स्वर्गों में देव रहते हैं और अधोलोक के अंदर भी भवनवासी के अंदर रहते हैं। नहीं नहीं, जीवों की बात मत करो, ये कैसे हो सकता है? गुणस्थान होते किसके हैं? मैं कहता हूँ करणानुयोग के बिना संसार दशा को सिद्ध करके तो बताओ। ये करणानुयोगी तो है जो संसारियों का संसार को ना सिद्ध करता है, द्रव्यानुयोग मुक्ति की प्राप्ति के लिए, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति माने संसार से मोक्ष, विकार से निर्वृत्ति, विकार से निर्विकार की ओर। मुझे निर्विकारी होना है, निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, संवर निर्जरा और मोक्ष, लेकिन कितने संवर, किसकी निर्जरा और कितने मोक्ष? खड़ा हो गया करणानुयोग, कितने संवर करोगे बोलो? कर्मों से रहित तो कर्म से रहित बतलाना पड़ेगा ना भाई साहब। ये करणानुयोग की चर्चाएं वैराग्य प्रेरक है, पुरुषार्थ प्रेरक है, वस्तु स्वतंत्रता को बतलाने वाली है, क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने वाली है, कण कण की स्वाधीनता को बतलाने वाली है। आप करणानुयोग को कमजोर मत समझो। जिस महल की कल मैंने चर्चा की थी, इस महल के चारों पिलर, चारों दीवारें बहुत मजबूत है, एक भी कमजोर नहीं है। कौन सी दीवार को कमजोर मान रहे हो आप? एक दीवार तो मजबूत है और बाकी तीन कमजोर है, तीन तो मजबूत है और एक दीवार कमजोर है। भाई साहब करणानुयोग के विषयों की श्रद्धा जिसे होती है उसे सच्ची सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है। इस विषय के निषेध का मतलब, इस विषय की विराधना का मतलब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की विराधना, और जिसने उनके ज्ञान की विराधना की सत्सम्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि ज्ञान की विराधना ना बोध ही उनको प्राप्त होगा, सम्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, सम्य दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। सर्वज्ञ की विराधना में सर्वज्ञ स्वभाव की विराधना है, सर्वज्ञ स्वभाव की विराधना में अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञान की विराधना है, आत्मा की विराधना है, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? श्रद्धा के विषय है ये सब, श्रद्धा से स्वीकार करने योग्य है। आप कहो जिस एंगल से बात कर सकता हूँ मैं, आप कहो करणानुयोग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की चर्चा तो वो कर सकता हूँ, आप कहें कि करणानुयोग से पुरुषार्थ की चर्चा तो वो कर सकता हूँ, आप कहें करणानुयोग के माध्यम से वैराग्य की चर्चा तो वो कर सकता हूँ, जैसा आप कहें कुछ भी की जा सकती है चर्चा। आधार रहेगा करणानुयोग, बिना करणानुयोग के आपको उन बातों की गहराई का पता नहीं लगेगा। पंच परावर्तनों की चर्चा तो पूरी की पूरी वैराग्य प्रेरक चर्चा है भाई साहब, करणानुयोग की चर्चा है। जानते हैं आप पंच परावर्तनों का स्वरूप? संक्षेप में लेता हूं, कैसा स्वरूप है पंच परावर्तन का? शुद्ध रूप से करणानुयोग की चर्चा है। पांच परावर्तन, अनादि काल से जीव पंच परावर्तन करता आ रहा है, अनंत काल हुए इसको संसार परिभ्रमण करते हुए। किसका नाम है पुद्गल परावर्तन? मैं उससे प्रयोजन सिद्धि की बात करूंगा। परावर्तन समझना उद्देश्य नहीं है, परावर्तनों को समझकर परावर्तन से मुक्त कैसे हो ये प्रयोजन है, ठीक है ना? तीन लोक की चर्चा पढ़ने का प्रयोजन, तीन लोक में कहां कहां घूमना है ये प्रयोजन नहीं है, लेकिन घूमा सब संसार ये समझ करके अब अपने ज्ञायक में आ जाओ, निज घर बिना विश्राम नाही, ये समझने के लिए तीन लोग समझना। तो पुद्गल परावर्तन किसे कहें? सबसे छोटे परावर्तन का नाम है पुद्गल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन जिसको कहते हैं। पुद्गल माने द्रव्य, द्रव्य परावर्तन पहला परावर्तन जिसको पुद्गल परावर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या है ये पुद्गल परावर्तन? परावर्तन चक्र, साइकिल, यहां से शुरू किया और ये पूरा करके वापस यहां आ गए, इसको आप कहेंगे चक्र, इसको कहेंगे आप परावर्तन। तो कहां से शुरू करें और कहां तक आए? कि जहां से शुरू किया हो वहीं तक दोबारा आ जाओ, तो इसका नाम है एक परावर्तन। ये कौन सा? अभी पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं तो आधार बनेगा पुद्गल। ये क्या मतलब? कि पुद्गल परमाणुओं को अवलंबन लेकर जिन पुद्गल परमाणुओं का संबंध हमारे साथ में हुआ, उन्हीं पुद्गल परमाणुओं का संबंध जब घूम फिर के वापस हमारे साथ में हो जाए तो उसका नाम है वो पुद्गल परावर्तन। बराबर। शास्त्रों में तो इस पुद्गल परावर्तन की व्याख्या करते हुए ऐसा कहा है, इतना बड़ा काल है इस पुद्गल परावर्तन का, इतना बड़ा काल, इतना बड़ा काल है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 63 ऊपर से दूसरी लाइन, आप उन पंक्तियों को देखें। पंडित पुटरमल जी साहब कहते हैं पुद्गल परावर्तन का स्वरूप बतलाते हुए, पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा कि जिसके अनंतवें भाग में, चेतन भाई एक पुद्गल परावर्तन, भीम जी भाई एक पुद्गल परावर्तन, उसके अनंतवें भाग में, अनंतवें भाग माने पुद्गल परावर्तन के अनंत भाग करो, कितना बड़ा काल है वो एक पुद्गल परावर्तन, उसके अनंत हिस्से किए हमने, अब एक हिस्सा उठाओ। बोले कितना बड़ा है? बोले इस हिस्से में अनंत सागर बीत जाते हैं। क्या मेरी लाइनें नहीं है? लाइन बतला दी मैंने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 63 पहली दूसरी लाइन ऊपर से, पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा कि जिसके अनंतवे भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। इसका मतलब समझे, एक हिस्से में अनंत सागर माने अनंत सागर एक बार बीत जाए, फिर अनंत सागर दूसरी बार बीत जाए, फिर अनंत सागर बीते, 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 फिर अनंत सागर, 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 अनंत सागर। अभी तो 17 बार हुआ है, अनंत बार करना है। ये अनंत सागर अनंत बार व्यतीत हुए तो एक पुद्गल परावर्तन होता है। कितना लंबा काल है पुद्गल परावर्तन का? सारे परावर्तन एक दूसरे से अनंत गुने उत्तर उत्तर बढ़ते हुए हैं, अनंत गुने बढ़े। कितना काल बिताया है तूने? क्या नहीं मिला तुझे पुद्गल परावर्तन के काल में? अंदाजा है कुछ? छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बतलाऊं। मुंबई में आपने किसी व्यक्ति को समझ लो आप 100 का नोट दिया, दुकान से कुछ सामान खरीदा और 100 का नोट दिया उसको दुकान वाले को, और घूम फिर करके आप 2-4 दिन में यहाँ आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ वो 100 का नोट दोबारा आपकी जेब में कब आएगा? कितना टाइम लगेगा? अब वो 100 का नोट जब कभी भी घूम फिर करके आपके पास में आ जाए दोबारा घूम करके, तो हो जाएगा ना पुद्गल परावर्तन? अरे पुद्गल परावर्तन नहीं, नोट परावर्तन होगा। पुद्गल परावर्तन थोड़ी ना, कि नोट परावर्तन है। कितना उम्मीद करते हो? आप जयपुर आए और जयपुर आकर के आपने वहाँ ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को आपने 150 रुपए दिए और टोटरमल स्मारक आ गए, और फिर आप जयपुर से वापस मुंबई आ गए। अब वो 150 का नोट आपकी जेब में दोबारा कब आएगा? बोलो दिलीप भाई, आएगा कि नहीं आएगा दोबारा कभी? कैसी स्थिति है? अभी मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं, अभी तो एक नोट की बात कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा इस स्थिति को और बढ़ाओ, 500 का नोट लेकर के उसके चेंज लो। अब जो 100 के नोट, 50 के नोट, 10 का नोट, कुछ चिल्लर जो आपके हाथ में आ गई है, क्या अब वो सब के सब जब आपके हाथ से निकल जाए और दोबारा उसी रूप में एकत्रित हो तो कितना काल लगेगा? इतना नहीं, अभी और बढ़ो आगे, पुनर्जन्म परावर्तन की बातें भाई। अभी सोचो आप, जो नोट आपकी जेब से निकला है वो नोट उतने ही स्पर्श रस गंध वर्ण के परमाणुओं रूप, वैसे ही कलर, वैसी ही आकृति, उसी रूप में उसके परमाणु को दोबारा कब आपके हाथ में आएंगे? आते हैं हाथ में। क्या प्रकृति अपने स्वरूप को वापस दोहराती है, इसीलिए पुद्गल परावर्तन कहा, चेतन परावर्तन नहीं कहा, चेतनों से संबंध नहीं है। ऐसा उल्लेख मिलता है शास्त्रों में कि तीन लोक के सर्व पुद्गल परमाणुओं को ये जीव ग्रहण करके छोड़ देवे, ऐसा अनेक बार हुआ है। कहानी पढ़ो आप कुछ भी कहो, में उच्छिष्ट भोजी ग्रहण करके छोड़ी हुई संपदा है। अब बोलो इससे वैराग्य भाव जागृत होता है कि नहीं? जिसकी तरफ आपका मन आकर्षित हो रहा है, जिस मोबाइल को देख करके आपका मन करता है, ये सिक्स है, ये चाहिए हमारे को, तो तुम्हारे को ये जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसा का ऐसा मोबाइल, इसी कलर वाला, इसी डिजाइन वाला, इसी कंपनी का, जो तुम्हारे को आकर्षित कर रहा है, ये भूतकाल में अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है। आपको ये लगेगा कि साहब मोबाइल क्रांति तो अभी 20-30 साल से है, कहां प्राप्त करके छोड़ा होगा? ऐसा नहीं है, ये नया आविष्कार नहीं है। दुनिया में नया आविष्कार कभी नहीं होता, नया कुछ होता ही नहीं। अरे तीर्थंकर जैसे महापुरुष नए नहीं होते, अनंत हो चुके उन जैसे, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष एक जैसे अनंत हो चुके हैं, चक्रवर्तियों के नाम से वो शिला भरी हुई पाई जाती है, जैसा स्वरूप है। आप क्या पूछते हैं कि बंगला हमारे को चाहिए देवलाली में, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तो आकर के रह जाए हम। अरे ऐसे बंगले में कई बार आके रहा है तू, ऐसे कपड़े तुझे कई बार मिले हैं, ऐसी गाड़ी तुझे कई बार मिली है, ऐसे दुकान मकान व्यापार रोजगार तुझे अनेकों बार प्राप्त हुए हैं, संतुष्ट नहीं हुआ? इसका नाम पुद्गल परावर्तन है। पुद्गल परावर्तन का स्वरूप बहुत टच करके निकल रहा हूं मैं आगे, पूरा शिविर पंच परावर्तन के लिए लगे ऐसा स्वरूप है, लेकिन अपने को पंच परावर्तन में थोड़ी ना, क्योंकि अपने को तो पूरा करणानुयोग लेना है, विषय भी तो करणानुयोग है अपना। किसका नाम पुद्गल परावर्तन? माने इसकी चर्चा शुरू करते हैं इस जीव के जन्म समय से, जन्म के समय इस जीव के जिन आहार वर्गणाओं का ग्रहण हुआ, वे आहार वर्गणाएं जो कि अनंत पुद्गल परमाणु थे, वे अनंत पुद्गल परमाणु जैसे स्पर्श सहित थे, जितने रस गुण के अविभागी प्रतिच्छेद सहित थे, जितने गंध गुण के और वर्ण गुण के जैसे अविभागी प्रतिच्छेदों सहित अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हुआ था, वैसे के वैसे अनंत पुद्गल परमाणु जब दोबारा काल क्रम से इसके पकड़ में आए, ग्रहण करने में आए, तो एक पुद्गल परावर्तन होता है। चर्चा सुनकर के दिमाग घूम जाता है, इतना लंबा काल है पुद्गल परावर्तन का, वैराग्य आता है कि नहीं? इस पुद्गल परावर्तन की चर्चा को सुनकर के अब ऐसा कौन सा पदार्थ होगा जिस पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा मन में रह जाएगी? विषय भोगों से विरक्ति नहीं होती, इन भोगों को अनंत बार भोग करके छोड़ा है, इन भोगों को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है, ये वैराग्य के लिए नहीं है? नहीं नहीं, मेरे को तो वैराग्य होता ही नहीं है, मैं तो वैराग्य से अतीत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, है बात तो ऐसा ही है। लेकिन वो जो स्वरूप है, उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति चाहिए कि नहीं? कान कान शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? आचरण निर्मल पवित्र होना चाहिए कि नहीं? वही तो चर्चा कर रहे हैं, वही तो सिखा रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि तू शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा है, तो बोलो सुनने की क्रिया का करता है या नहीं? कि नहीं है, तो सुनने आना कि नहीं? कर सुनने आना कि नहीं? नहीं, मैं तो सुनता ही नहीं हूं, मैं सुन सकता ही नहीं हूं, तो सुन सकता ही नहीं है, सुनने की तेरे में योग्यता ही नहीं है, मैं तो बस ज्ञान मात्र करता हूं, तो फिर यहां आने की क्या जरूरत है? घर बैठी कर लो, और घर पे भी तो वही करता हूं, ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ किया नहीं ना मैंने। भाई साहब ये समझने के लिए है करणानुयोग। इस पुद्गल परावर्तन से अनंत गुना बड़ा है क्षेत्र परावर्तन। द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना बड़ा है क्षेत्र परावर्तन। ये क्षेत्र परावर्तन किसका नाम है? लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर इस जीव का जन्म मरण हुए उसका नाम है क्षेत्र परावर्तन। हर प्रदेश प्रदेश से जन्म मरण। देवचल गुरु पूजन करें हम और युगल जी साहब की पूजन की जयमाला की प्रारंभिक दो पंक्तियां, जब तक ये पृथ्वी क्षेत्र परावर्तन नहीं समझो आपको उन पंक्तियों का मर्म समझ में नहीं आया। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। भवन में जी भर घूम चुका, क्षेत्र परावर्तन की बात बतला रहे हैं। चले पेरिस घूमने, क्यों भैया अलास्का का प्रोग्राम बनाए नवीन भाई के साथ में घूमे अभी हम वहां। बोलो कहां कहां घूमना बाकी रह गया है? इस तीन लोक में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो क्षेत्र मेरी जन्म स्थली नहीं रहा? क्या बात कर रहे हैं आप? कण कण को जी भर के देखने का मतलब जानते हैं? जी भर के देखने का मतलब ये है, अभी मैं आपसे कहूं किरण भाई कि चलो आपको बंबई घुमाता हूँ, क्या बात करते हो, बंबई रहते 50 साल हो गए हमारे को, आप क्या बंबई घुमाओगे? समझ आ रही है बात? जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, कोई व्यक्ति मेरे से कहे पंडित जी आपने जयपुर घूमा है, क्या जयपुर घूमा है, क्या बात करते हो, जयपुर जन्म हुआ है मेरा। मैंने जिस जगह पर मेरा जन्म हुआ हो उससे ज्यादा परिचित जगह मेरे लिए और क्या हो सकती है? तीन लोक के प्रदेश प्रदेश के बारे में कहते हैं बाबूजी, क्या कह रहे हैं, कण कण को प्रदेश प्रदेश को तूने जी भर के देखा है, क्या बाकी रह गया दुनिया में देखने लायक, कौन सा क्षेत्र अच्छा है? कि नहीं साहब इन क्षेत्रों की तो छोड़ो, एक काम करें अपन तो सब मिलके विदेश क्षेत्र चलते हैं। क्यों, वो तो अच्छा है कि नहीं? विदेश क्षेत्र का क्षेत्र, विदेश क्षेत्र में तो सिमंदर भगवान है, विदेश क्षेत्र में तो चौथा काल है, वो क्षेत्र तो बड़ा जबरदस्त है, वहां की तो महिमा ही कुछ और है। हमेशा चौथा काल रहता है, हमेशा भगवान होते रहते हैं, केवली होते रहते हैं, चेतशंकर होते रहते हैं, चक्रवर्ती होते रहते हैं। तो चक्रवर्ती बनना है क्या तुम्हारे को भाई साहब? विदेश क्षेत्र का कौन सा ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश पर जन्म नहीं हुआ हो? देखो इन द्रव्य परावर्तन और क्षेत्र परावर्तन की इन चर्चाओं को पढ़ने से हमारे को ये बात समझ में आती है कि किसी पदार्थ को देख करके अनुकूलता का भाव या आकर्षण का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनंत बार ग्रहण कर छोड़ा है, एक बात। दूसरी बात, किन्हीं पुद्गल परमाणुओं और संयोगों को देख करके द्वेष बुद्धि का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनंत काल उनके साथ में हमने बिताया है, तेरे शरीर रूप होकर के वो पुद्गल परमाणु एक क्षेत्रावार रूप रहे, क्या बात कर रहा है? तो किससे घृणा कर रहा है? ये जो विद्या दिखाई देती है ना, ये जो मलमूत्र आदि दिखाई देते हैं, ये जो कीचड़ दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है, ये गंदगी में जितने पुद्गल परमाणु हैं, ये पुद्गल परमाणु शरीर रूप होकर के एक क्षेत्रावगा मेरे साथ में रहे हैं, ये पुद्गल के परमाणु हैं, पुद्गल को पुद्गल जान, घृणा मत कर, उससे भिन्न देख, अनंत शक्ति संपन्न देख उन पुद्गल परमाणुओं को, अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है। इस जगह की महिमा आती है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ये जगह बहुत अच्छी है, ये तो बहुत मन लगता है साहब ऐसी जगह पर। देवलाली आ जाओ तो बहुत शांत वातावरण लगता है, बहुत अच्छा लगता है अपने को। देवलाली का कौन सा प्रदेश है जहाँ जन्म नहीं हुआ हो? कहाँ जन्म नहीं हुआ हमारा? क्षेत्र परावर्तन कहां से शुरू करते हैं? क्षेत्र परावर्तन मेरू पर्वत के नीचे से शुरू करते हैं, 8 रुचक प्रदेशों से शुरू करते हैं, उनको केंद्र बनाकर अपने आत्मा के 8 प्रदेश सेंटर प्रदेश वहां हो और असंख्यात प्रदेश वहां जन्म लेवे, एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों पर जन्म मरण हो। अंदाजा है आपको कितने प्रदेश हैं? सुई की नोक पर असंख्यात प्रदेश हैं, सुई की नोक पर असंख्यात प्रदेश। आप कल्पना करो, उसकी तो छोड़ो आप, उसमें तो कितना समय लगेगा, अभी इतना समझो, हम जिस हॉल में बैठे हैं, इस हॉल के प्रदेशों के ऊपर प्रत्येक प्रदेश पर जन्म लेने में कितना काल लग जाएगा? अनंत काल लग जाएगा। हॉल की बात कर रहा हूँ, तीन लोग की नहीं। उदाहरण देके समझाऊ आपको, हॉल में समझे तो आप 100 टाइल्स से है मनीष भाई, 100 टाइल्स है मान लो, आपको बिठाया यहाँ चेयर पर, क्या 100 टाइल्स पर सब पर हमने नंबर डाल दिए। अब यहाँ से आप एक काम करो, एक बॉल लो, उस बॉल को उछालो, उछल करके बॉल जहाँ जिस टाइल पर गिरेगी, हम ये मान लेंगे कि उस टाइल पर आपका जन्म हो गया, क्लियर। अब वापस आकर के बैठो, दोबारा बॉल उछालो, जिस जगह पर वो बॉल जितने नंबर वाले टाइल पर गिरी हमने मान लिया वो भी हो गया, ठीक है। तो 100 टाइल है, कितनी बार? एक बार बॉल उछालना मतलब एक जन्म, ठीक है। 100 टाइल है माने 100 प्रदेश है, कितनी बार बॉल उछालना पड़ेगा? 100 बार। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बुद्धि पूर्वक भी करोगे ना तो 10,000 से कम नहीं होगा, 2-5,000 तो मामूली बात है, सिर्फ 100 टाइल की बात कर रहा हूँ मैं। बुद्धि पूर्वक करोगे तो भी, और अबुद्धि पूर्वक आँख बंद करके सिर्फ ऐसे उछालते रहो आप, कब 100 टाइल पूरी हो जाएंगी बोलो? फर्स्ट स्टेप की बात है, ऐसा नहीं कि उछल करके, ऐसा नहीं, एक बार जहां गिरा उसकी बात है, इसे जन्म की बात कर रहे हैं। जन्म तो जयपुर में हुआ था और वर्तमान में देवलाली के प्रदेशों में हूँ यहाँ, तो उसकी बात तो नहीं है। जिन प्रदेशों को टच किया घूमे फिरे उसकी बात तो नहीं है, यहाँ जन्म लिया, जन्म ले लेकर के जिन प्रदेशों को पूरा किया उसकी बात है। अब कौन सा क्षेत्र ऐसा रह जाता है सुखी होने के लिए, कौन से क्षेत्र में जाए बोलो? सिद्धालय में जाए कि नहीं जाए? जहाँ सिद्ध परमात्मा मौजूद है उनके आस पास में जाए कि नहीं जाए, तब तो सुखी हो जाएंगे। ये करणानुयोग ये कहता है कि तू तो सिद्धों के बीच में अनंत मार जाकर के आया है। पर क्षेत्र की महिमा आती है हमारे को, उस क्षेत्र की महिमा आती है हमारे को, विदेश क्षेत्र की महिमा आती है हमारे को, भोग भूमि की महिमा आती है हमारे को, जयपुर की महिमा आती है, सोनगढ़ की महिमा आती है, स्वक्षेत्र की महिमा नहीं आती है। पर क्षेत्र की महिमा आती है, अपने क्षेत्र की महिमा नहीं आती है। अरे कितना भी पर क्षेत्रों में जन्म मरण किया हो लेकिन स्व क्षेत्र को छोड़कर के बाहर नहीं निकला। ये क्षेत्र परावर्तन की चर्चा करते हुए स्व क्षेत्र ख्याल में आता है या नहीं? द्रव्य परावर्तन की चर्चा करते हुए स्वद्रव्य ख्याल में आता है या नहीं? क्यों किया तूने द्रव्य परावर्तन, क्यों किया क्षेत्र परावर्तन? क्योंकि स्व क्षेत्र और स्वद्रव्य को नहीं पहचाना, इसलिए किया। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र को नहीं पहचाना, स्वकाल को नहीं पहचाना, स्वभाव को नहीं पहचाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, कितना काल हो गया? अनंत काल हो गया। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपन पहचाना। सबको देखा, सबको जाना, सबका ज्ञान, अपने आप का ज्ञान वो नहीं, इसकी महिमा आ रही है। एक एक परावर्तन को उठा करके देखो आप, वैराग्य हुए कैसे? होना चाहिए ना, कठोर चित्त है भाई, मिथ्यात्व हावी हो रहा है, दर्शन मोहनी हावी है, क्यों नहीं हो रहा है बताओ मेरे को। अब आप ये कहोगे कि गुरुदेव के इतने व्याख्यान सुनने के बाद भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? द्रव्यानुयोग से जवाब दो, समझ में नहीं आएगा। मैं कहता हूँ करणानुयोग से समझाऊंगी तो समझ में आएगा, क्यों नहीं हो रहा है? दर्शन मोहनी कर्म है, मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, विपरीत श्रद्धा है, सही बात पकड़ में नहीं आ रही है, वचनों में आ रही है, कर्णेन्द्रिय से सुन रहा है, समझ में भी आ रही है, कंसेप्ट भी क्लियर है, सारा कंसेप्ट क्लियर है। एक एक प्रदेश, एक एक पर्याय का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, ऐसा क्या रह गया जो क्लियर नहीं है? बिना करणानुयोग के और गहराई से नहीं जा पाओगे। मैं कह रहा हूँ 7 तत्व सिद्ध कर दो, चलो करणानुयोग के बिना, बोलो 7 तत्व समझाओ। अरे द्रव्यानुयोग तो 7 तत्व ही नहीं है, कहाँ 7 तत्व? कहाँ आश्रम की चर्चा कैसे होगी, बदलाव बंद तत्व की चर्चा कैसे होगी, संवर निर्जरा की चर्चा कैसे होगी। ये सात तत्व खड़े करने के लिए आपको करणानुयोग पढ़ना ही पड़ेगा। आश्रम और बंद तत्व की चर्चा करने के लिए आपको करणानुयोग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना करणानुयोग के ना आश्रम समझ में आएगा ना बंद समझ में आएगा। मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आप कहोगे मैं तो मुक्त हूँ, ठीक है वो मुक्त अच्छी बात है, तो परेशानी तो नहीं है ना कोई। नहीं नहीं मैं तो मुक्त हूँ, मुझे क्या परेशानी, फिर रोना मत। नरक में जाए तो कोई ऐतराज है आपको, क्योंकि मुक्त तो वहां भी है। निगोद में चला जाए तो कोई ऐतराज है आपको, मुक्त तो वहां भी है। कितने द्रव्य परावर्तन किए, कितने क्षेत्र परावर्तन किए, लेकिन फिर भी उन परावर्तनों से परे रहा ये आत्म तत्व, ये रहस्य है पंच परावर्तन का। द्रव्य परावर्तन करते हुए भी इस जीव का कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, क्षेत्र परावर्तन करते हुए भी इस जीव में कुछ कमी नहीं हुई, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर भी इस जीव का कुछ नहीं बिगड़ा, और क्षेत्र से प्रत्येक प्रदेश पर जन्म लेने के बावजूद भी, सिद्धों के नजदीक भी जाकर के जन्म लेने के बावजूद भी रंच मात्र भी सुखी नहीं हुआ। अब क्या करें, पर क्षेत्र दुखी करने में भी समर्थ नहीं है, नरक में चले जाए वो क्षेत्र दुखी करने में समर्थ नहीं, और सिद्धों के आसपास चले जाए वो क्षेत्र इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं। यह है क्षेत्र परावर्तन। आपने कैसा क्षेत्र परावर्तन पहले पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, इस परावर्तन तो इस तरह से पढ़ो तो समझ में आए। अरे परावर्तन परावर्तन के लिए नहीं है ना, जिनवाणी जिस माध्यम से समझा रही है, लेकिन समझा किसे रही है, इशारा किसकी तरफ है, परावर्तन ये एंगल है, और परावर्तन से समझाना किसे है कि जाए भगवान आत्मा को। कल में हरी बस गुणस्थान ये एंगल है, और देखना किसे है कि पहला गुणस्थान, गुणस्थान नहीं पहले गुणस्थान वाला जीव, देखना जीव को है, चौथे गुणस्थान वाला जीव, पांचवे गुणस्थान वाला जीव। अब जीव निकाल दो इसमें से तो कोरा गुणस्थान कुछ नहीं है, मुर्दे की सटी की समान शोभा है कुछ नहीं है, फिर तो बेकार है, खाएगी शोभा है वो। तो इन अनुयोगों में से यदि अध्यात्म को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता है, और अध्यात्म माने है मक्खन, अध्यात्म माने है रहस्य, अध्यात्म माने है आनंद, अध्यात्म माने है बीज रास्ता, अध्यात्म से सिद्ध होता है प्रयोजन, करणानुयोग से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हाँ डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, यदि आपके पास में डायरेक्ट निकला हुआ है मक्खन तो कोई ऐतराज नहीं है, घी डायरेक्ट निकला हुआ है तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन डायरेक्ट यदि नहीं है तो निकालना पड़ेगा ना। ये चर्चा सुनते हुए भी बीज रास्ता की चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो वेद विज्ञान की बात आएगी ना हमारे हृदय में, आनी ही चाहिए। यदि वो वेद विज्ञान की चर्चा, वो बीज रास्ता की चर्चा, वो आत्मानुभूति की चर्चा, वो क्षेत्र से भिन्न ज्ञायक की चर्चा, पुद्गलों से भिन्न ज्ञायक की चर्चा यदि लक्ष्य में नहीं आती है तो परावर्तन पढ़ना बेकार है। कुछ नहीं पढ़ा आपने, लोक पढ़े और लोक से भिन्न भगवान आत्मा नहीं देखे, पांच शरीर पढ़े और शरीरों से भिन्न ज्ञायक नहीं देखे, तो शरीर पढ़ने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया था हमने, ए फॉर एप्पल पढ़ाया, बी फॉर बॉल पढ़ाया, सी फॉर कैट पढ़ाया, तो सी फॉर कैट कैट के लिए पढ़ाया था या सी समझने के लिए पढ़ाया था, सी समझने के लिए पढ़ाया था भैया, कैट के लिए नहीं। तो हमने जो ये गुणस्थान पढ़ाए, हमने जो पंच परावर्तनों की चर्चा शुरू की, ये परावर्तनों की चर्चा परावर्तन कराने के लिए, अरे साहब आपने तो क्या पुद्गल परावर्तन करा दिया, अरे कराना नहीं है मिटाना है, अभी क्षेत्र परावर्तन कराना थोड़ी ना, हम तो मिटाने की बात करते हैं, तो फिर करा क्यों रहे हो आप, समझा क्यों रहे हो आप। इसलिए समझा रहे हैं कि प्रभु जी अब ना भटकेंगे, इसलिए समझा रहे। पंच परावर्तन करोगे कि नहीं करोगे, कर लेंगे साथ के साथ, स्वरूप जानते हो कितना बड़ा है, ये समझा दो एक बार, ये समझाया तो काम कर दिया, माथा पकड़ लिया, अब नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे इसके लिए पहले समझना पड़ेगा ना स्वरूप कैसा है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी
अब अपनी खबर हमें हो गई।
और अपनी खबर नहीं है इसलिए परावर्तन है, और अपनी खबर हो जाए तो परावर्तन मिट जाए। दो परावर्तनों की थोड़ी बहुत चर्चा की है, और काल परावर्तन, भाव और भाव परावर्तन, इनकी चर्चा दोपहर के सेशन में करूंगा और कल चर्चा करूंगा कर्मों के संदर्भ में। ऐसी दिमाग में प्लानिंग है, बाकी तो सब क्रमबद्ध है। तो सभी इन स्वरूपों को समझकर अपना आत्म कल्याण करें, इसी भावना से।
Thank you.